ओम शांति। आज का थोड़ा प्रोग्राम बताएंगे। कल हमने देखा कि पैनल डिस्कशन से कितनी सारी बातें की क्लैरिफिकेशन हुई ना, लगता है ना? राजू भाई से, दीदी से और सूर्य भाई के क्लास से ही बहुत सारी क्लैरिफिकेशन हुई। लिखा एक ने, लेकिन उसमें से अनेकों का फायदा हो गया। उसमें से एक प्रश्न जो था कि ये जो समय है, कई लोग जैसे थक गए हैं, योग कब तक लगाएंगे, कब तक मुरलियां पढ़ते रहेंगे, कब तक ये करेंगे, कब तक वो करेंगे। तो हमने दादी की लाइफ से देखा है, मैं दादी को 35 इयर्स से जानती हूँ, उनके साथ रही हूँ 35 इयर्स से। तो उन्होंने कभी भी खुशी कम हुई नहीं देखी। जैसे उनको पहले भगवान मिला, वही खुशी अंत तक रही। चाहे कैसे भी उसकी शरीर की बीमारियां आई, कुछ भी उनको होता था, लेकिन उसकी खुशी कभी गायब नहीं हुई। ये नहीं कहा कि मैं बिस्तरे में हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मैं वो नहीं कर सकती हूँ। मनसा सेवा तो कर सकते हैं ना। तो दादी हमेशा यही कहती थी कि और कुछ भी नहीं कर सकते, मनसा सेवा करो। जैसे सूर्य भाई ने कितना अच्छा हमको सुनाया कल, माइंड को क्रिएटिव रखो। क्रिएटिव माइंड ही हम आगे जाके जब बुजुर्ग होंगे तो वो क्रिएटिव माइंड हमारा माइंड को, जैसे डिजीज हो जाता है वो नहीं होगा। जैसे कईयों को अल्जाइमर्स होता है, क्यों होता है? क्योंकि माइंड को एक्टिव क्रिएटिव नहीं रखा। दादी हमेशा कहती थी कि मेरा शरीर को कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बुद्धि सालिम रहे। अपने माइंड को वो बहुत ध्यान रखती थी। कोई भी प्रकार का, जैसे हल्का संकल्प, निराशा का संकल्प, ये कभी नहीं आने दिया दादी ने। और ना कभी किसी से, किस बातों से थकी थी, सेवा से कभी नहीं थकी। मैं 93 से दादी के साथ कांस्टेंट वर्ल्ड टूर किया है। 6 दिन में 3 कंट्रीज को कवर करते थे। एक प्लेन से उतरो, दूसरे प्लेन से चढ़ो, दूसरे प्लेन से उतरो फिर चढ़ो, तीसरे प्लेन से चढ़ो उतरो। दादी ने कभी ये संकल्प नहीं किया कि ये मैं सेवा कब तक करूंगी, जबकि वो 80 इयर्स ओल्ड थी। और ये तो अभी सिर्फ 3 मास हुआ है, वो हम थक गए कि कब तक ये समय चलेगा। अभी ये भी जो समय है, हम सब वो सोच रहे हैं कि हम यज्ञ में इतना स्टॉक जमा करें। हम जयंती दीदी को लेके गए थे सब डिपार्टमेंट में, 6-6 महीने का, साल भर का, मीन्स इस रीति से अपना स्टॉक, ग्रेन्स का, ग्रेन अनाज, हम अनाज का स्टॉक करते हैं, आटा स्टॉक करते हैं, चावल स्टॉक करते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय को कुछ घटना कम ना हो जाए, बाबा के बच्चे वो बेगरी पार्ट ना दिखे। तो हमारे आगे तो दादियां थी, सब थी, जो हमको इतनी पालना मिली दादियों से। तो जो आने वाले बाबा के बच्चे हैं, उनों के लिए तो दादी है नहीं, आप सभी है। तो आप सभी यहाँ मधुबन निवासी पिलर्स हो। बस पूरा किया। तो आप सभी पिलर्स हो, यही हमको सोचना है कि आने वाली जो समय है, जो दीदी ने कल सुनाया कि यहाँ भीड़ लगेंगी, तो वो किन किन के पास जाएंगे? आप सभी के पास आएंगे, आपसे शक्ति लेंगे, आपसे स्ट्रेंथ लेंगे, आपसे दर्शन करने आएंगे, जैसे दीदी ने कल सुनाया। तो ये सब हम बातें बुद्धि में रखना है, ना कि हमको समय इस रीति से निराशा से देखना है कि कोरोना वायरस कब तक। अनेक बातें सूरज भाई ने कितना अच्छा सुनाया, क्रिएटिव रखो, एक्सरसाइज करो, लेकिन सब बाबा की याद में, ना कि और फालतू बातों में हमारा ध्यान जाए, अटेंशन जाए, जगमोई जड़मोई, ये सब बातें नहीं। हम भट्टी क्यों कर रहे हैं? वो संस्कार हम अपने में पैदा कर रहे हैं, अच्छे संस्कार। जैसे पहले भी मैंने बोला कि हमको अभी ये जो याद है वो हमारे नेचुरल, ऐसे नहीं दिखाई दे कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमको ये याद नेचुरल, जैसे हम दादियों में देखते हैं कि कितना जैसे पावरफुल वरदानों की दृष्टि दे रहे थे, तो इस रीति से हम औरों को दृष्टि वरदानों को दे सके, उसके लिए हमको स्टॉक जमा करना है। हमने अभी तो कुछ नहीं किया। मेरे को अभी बहुत पश्चाताप हो रहा है कि दादी होती थी हमको बहुत कहती थी, जब हम टूर पर जाते थे, आओ आप 5 मिनट सुनाओ, कुछ सुनाओ। कितने सालों से, 30 ईयर्स से मेरे को 5 मिनट आओ, कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ। लेकिन हम पहले देखते थे, दीदी थी, जयंती बहन थी, दादी थी, ये लोग वाचा सेवा करते थे, हम सब स्टूल सेवा करते थे, तो हमको इतना नेसेसरी नहीं लगा कि हम भी वाचा सेवा करें। आज मेरे को फील हो रहा है, जो दादी बहुत कोशिश करती थी, क्योंकि ये नहीं समझती कि मेरी ब्राह्मणी सिर्फ बन के रही, हमारी उन्नति के लिए उस बहुत सोचती थी कि इसका अंदर से डर निकल जाए, वो कैसे कि भी करके उसका मुख खुले। आज मैंने उनका जो माना था, तो मैं आज बहुत बड़ी टीचर हो जाती थी, जैसे दीदी है, जैसे सब बड़ी बड़ी बहनें हैं। तो मतलब बात का जो हिचक है वो आज नहीं होती थी। ऐसे नहीं समझो मैं डर नहीं रही हूं अभी बोलते, मैं बहुत डर रही हूं अंदर से, लेकिन कहने की भावना ये है कि अगर हमने वो पश्चाताप की घड़ी ना आवे, जो मैं अभी पश्चाताप कर रही हूँ कि उस समय इतने सालों में मैं थोड़ा बोलना सीखती थी, क्लासेस कराना सीखती थी, भाषण करना सीखती थी, तो आज दादी नहीं है तो मेरे को कितना काम आता था। अभी सारी टीचर्स कहती आप मेरे पास आना, मैं मेरे पास आ, क्या मुँह सिर्फ मुँह दिखाने जाऊंगी? तो कहने का भाव थोड़ा सटल है, लेकिन समझ लेना कि उस समय मैंने अगर दादी का सुना था तो आज मेरी वो घड़ी नहीं आती कि मैं क्लास नहीं करा सकती हूँ, मैं मुरली नहीं सुना सकती हूँ, मैं भाषण नहीं कर सकती हूँ। तो जो भी ये समझते हैं कि अभी के कितना समय योग करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं समझना है। जितना हम करेंगे उतना अच्छा है। जमा करो, जमा करो, जमा करो। बैंक में पैसा डालते हैं तो ये थोड़ी हम सोचते हैं कि कहाँ तक डालेंगे, हो तो डाल देते हैं, करोड़पति बन जाते, तो हम इसी में ही हमको अपना खजाना को जमा करना है। ओम शांति। आज का प्रोग्राम इस रीति से होगा कि अभी हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मोहिनी दीदी को न्यूयॉर्क से कि प्लीज आप हमारे भाई बहनों से भट्टी में आके थोड़ा मीन्स कुछ सुनाए। हम चाहते थे कि वो लाइव करे, लेकिन तबियत के कारण वो नहीं कर पा रही, तो हम थोड़ा उनका वीडियो दिखाएंगे। फिर उसके बाद बहुत अच्छा क्रिएटिव सेशन है, आपको मजा आएगा, उसमें आपकी बुद्धि काफी यूज होंगी। अभी यही सोचना, हम क्रिएटिव माइंड रखना है। हाँ, तो यही हम ध्यान पर रहे। फिर हमने जयंती बहन खास करके, हमारे साथ कोऑर्डिनेटर थी सुधीर भाई को, जयंती बहन और हम दोनों को रखा था, लेकिन ड्रामा अनुसार उनको जाना पड़ा। वो भी मेरे को डर लगा था, लेकिन समय अनुसार सब ठीक हो रहा है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा लाइव, तो वो भी हमको देखेंगी, हम भी उनको देखेंगे, ठीक है ना। फिर किसी को उसको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद दीदी हमको योग कराएंगी आधा घंटा। फिर आप सब भोजन में जाएंगे। सॉरी, एक बात भूल गई कि इस मोहिनी दीदी के बाद 5 मिनट ब्रेक, ठीक है ना। फिर सब दौड़ के आएंगे वापस। ओके, दौड़ना भी अच्छा है, एक्टिव। और फिर भोजन पे जाएंगे तो फिर अपनी ऊंची अवस्था बना के रखेंगे, साइलेंस में रहेंगे। आज साइलेंस का दिन है, सॉरी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन आप सभी के लिए साइलेंस। ओके, फिर 5 से 5:30 योग दीदी हमको कराएंगी, और उसके बाद फिर राजू भाई। तो कितना स्पष्ट हमको सारा ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि राजू भाई ने भी इतने सालों से मुरली, अभी सब मुरलिया को मनन चिंतन किया है, तो हमको अच्छा खजाना मिल रहा है। फिर उसके बाद योग है 6:30 से 7:00। फिर उसके बाद 7 से 8:00 हमारी बड़ी दादी आएंगी, और हमको आज स्पेशल सेशन है। वो भी जैसे कल आप सब वरदानों की दृष्टि दादियों से प्राप्त किया, आज वो वरदान का क्राउन आपके सिर पर रखा जाएगा। फिजिकली नहीं, वरदान मिलेगा, वो आप सब समझेंगे कि ये मैं हूँ। जो भी वरदान आपको मिलेगा, यही स्मृति में लाना है कि ये मैं हूँ, ना कि मैं बनने वाला या बनूंगा, मैं हूँ, ठीक है ना। तो उसी चिंतन में हम रहेंगे जब हमको वरदान मिलेगा दादी से, ठीक है। फिर उसके बाद भोजन, फिर विश्राम। ओम शांति।
शांति, ओम शांति। बहुत बहुत हर्ष हो रहा है आप सभी से शांतिवन में मिल रहे हैं। शांतिवन की स्मृतियां तो बार बार आती हैं। पिछली बार जब वहां से निकले तो कितना सभी से, हर कॉटेज से विदाई मिली, बहुत खुशी मिली, और हमें जान के बहुत खुशी हुई कि आप सभी भट्टी कर रहे हैं। और ये तो जरूर है कि जो कुछ अपने वहां पर शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर में होता है, उसकी लहर तो सारे विश्व में फैलती है। तो आप भट्टी कर रहे हैं उसकी हमें बहुत खुशी है। और आज के लिए आपने ये टॉपिक रखा, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को फिर से रिफाइन करती हूँ कि कंट्रोलिंग पावर से अगर हम कहें मर्यादा पुरुषोत्तम और रूलिंग पावर को हम कहेंगे स्वराज अधिकारी, तो हम इन दोनों शब्दों को मर्यादा पुरुषोत्तम और स्वराज अधिकारी, तो आप देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम में हम अपने स्वरूप को सामने लाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम का तो मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत श्रेष्ठ महिमा है और संगम युग पर ही हम बच्चों की ये महिमा है। तो अगर हम अपने जीवन में जो भी मर्यादाएं पापा ने हमें बताई हैं, ईश्वरी परिवार में हर प्रकार की मर्यादा, हर एक मर्यादा की पालना जो होती है, कोई भी बात की जो पालना है प्रैक्टिकल है, वो वास्तव में संकल्प से शुरू होता है, फिर संकल्प के बाद वाणी, फिर कर्म, फिर और सभी कर्म इंद्रियां आगे, फिर दृष्टि भी होती है, वृत्ति भी होती है। तो इसलिए पहले पहले तो हमको जो कुछ देखना है मर्यादा की पालना में, वो संकल्प से देखना है, क्योंकि अगर हमारा सोच मर्यादा का है, अब सोच में मर्यादाएं क्या कहेंगे, हमारे जीवन ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहें, फाउंडेशन कहें, विशेषता कहें, पावर कहें, वो है प्योरिटी की। और प्योरिटी में भी अगर हम देखें तो पांच विकार तो है ही, उसकी निर्विकारी है, परंतु उसके साथ साथ जो उसके बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे अंश भी हैं, उसमें भी हमको अटेंशन देकर, तो मर्यादाओं का पालन पहले पहले मर्यादा, क्योंकि पहले हम लोगों का हमेशा ये होता है कि कर्म इंद्रियों पर ध्यान जाएगा, ज्ञान इंद्रियों पर जाएगा, परंतु अगर संकल्प से ही हम शुरू करें मर्यादा, तो अगर हमारा सोच मर्यादा युक्त है तो संकल्प से फिर हमारा वृत्ति पर बहुत प्रभाव है, और वृत्ति जो है वो इतनी सूक्ष्म है, पर वृत्ति जो है उसका जो वाइब्रेशन है, देखो संकल्प की भी वाइब्रेशन होती है, पर जो वृत्ति की वाइब्रेशन है वो भी बहुत पावरफुल है। मेरे को एक बात याद आती है, जब मुझे वृत्ति का पता चला, बहुत साल पहले की बात है, जब दीदी मनमोहिनी पांडव भवन में हम लोग रहते थे आके, तो अंगूर की बेलें लगी हुई थी, पहली बार अंगूर लग रहा था, तो सभी को बहुत एक्साइटमेंट होती थी, जाके देखें, बार बार जाते थे, तो दीदी कहती है देखो बेशक, पर वृत्ति नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिर बाबा को भोग नहीं लगा सकेंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों वृत्ति, बोला बहुत मीठे अंगूर होंगे, कितने अच्छे अंगूर हैं, ये सब मत सोचो, क्या अच्छे तो हैं, मीठे भी होंगे, तो बोला नहीं, इसमें वृत्ति चली जाती है। तो वृत्ति में अटैचमेंट हो सकती है, वृत्ति में लोभ हो सकता है, बहुत सुख में वृत्ति में अपनी विशेषताओं का अभिमान हो सकता है, किसी और की तरफ देह का ध्यान जाए, वृत्ति में वो देह अभिमान है, देहभान है, या कभी कभी सूक्ष्म में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आए तो वो क्रोध का अंश है। तो मर्यादाएं संकल्प से फिर वृत्ति में देखें, आज दिन भर में कुछ भी, कभी किसी को देखा, क्या विशेषता की तरफ ध्यान गया या किसी की कमजोरी की तरफ ध्यान गया। हमेशा हरेक की विशेषता की तरफ मेरा ध्यान जाए तो मेरी वृत्ति श्रेष्ठ रहेगी, न केवल श्रेष्ठ रहेगी परंतु किसी की विशेषता को देखने से उस आत्मा की हिम्मत बढ़ती है, उस आत्मा में उल्लास आता है। न केवल ये परंतु उस आत्मा की जो पालना होती है उसे जो शक्ति मिलती है या मेरे प्रति उसका स्नेह जागरण होता है। आज यज्ञ में इसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता है कि हम सभी के प्रति हमेशा हरेक की विशेषता। देखो ड्रामा है, हम सभी एक्टर्स हैं, हरेक एक्टर का अपना पार्ट है और कोई पार्ट बड़ा छोटा नहीं है। क्योंकि अगर एक भी एक्टर थोड़ा लेट हो जाए स्टेज पर ना पहुंचे तो ड्रामा शुरू नहीं होगा, और शुरू नहीं होगा तो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं तो खत्म नहीं होगा। तो हर एक्टर आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है और स्पेशल है। तो जैसे कि एक होता है कि कंट्रोल करना वृत्ति को, ये नहीं सोचना ऐसा क्यों हो गया। दूसरा होता है कि क्या करना है, जितना जितना हम अपने को मुझे क्या सोचना है, मेरी वृत्ति में क्या होना चाहिए, न कि क्या नहीं होना चाहिए, मैंने क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, तो बहुत लंबा चार्ट हो जाता है नहीं। और बहुत समय से पुरुषार्थ ही है ना हम सभी, शुरू में तो फिर भी हम कह सकते थे अभी तो इतने वर्ष का पुरुषार्थ है, अभी तो संपन्न और संपूर्ण होने का समय है। तो ऐसे समय पर अपने को न केवल होमवर्क लेकिन जैसे कि एक प्रैक्टिकली मुझे क्या सोचना है। बाबा कहता है हर सोच शुद्ध हो, ऊंच हो, शांत हो। शुद्ध सोच हो, ऊंच हो, श्रेष्ठ हो और शांत हो। तो अगर हर संकल्प की ये मर्यादा हम रख लें कि आज मेरे को, और न केवल ये, जब आप ये मर्यादा रखेंगे सोचने की तो पहले तो आपको खुद अपने से अपने संकल्पों का जो बल है, प्राप्ति है, सुख है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी। क्योंकि अपने संकल्प का पहले स्वयं को प्राप्ति होती है ना, फिर दूसरों को होती है। ऐसे ही जैसे कि बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे सभी के प्रति प्रेम की भावना रखो, सबके प्रति, कोई भी ऐसा ना हो जिसके प्रति मेरा स्नेह ना हो, जिससे एक अपनापन आता है। तो ये अगर हम वृत्ति में रखें तो संकल्प की मर्यादा, फिर वृत्ति में मर्यादा, और सबसे ज्यादा जो बहुत जरूरी है वो हमारे बोलने की मर्यादा। क्योंकि बोलने की जो मर्यादा है, जिसको हम कहें कि मुख का कंट्रोल, बोलने पर कंट्रोल, पर मैं फिर कंट्रोल नहीं कहना चाहती, वो बहुत पुराना शब्द है, मैं इसको मर्यादा शब्द कहना चाहती हूँ। कई दिन से मैं इसी पर चर्चा कर रही हूँ कि बोल के मर्यादा। तो हमारी दीदी मनमोहिनी थी, क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत शिक्षाएं देती थी, तो वो हमेशा ही कहती थी आपके बोल में वरदान भरे हुए हों, किसी को वरदान दो आप। कभी भी ये नहीं किसी को मिलो पहले तो उसको ये याद दिलाओ, देखो कल तुमने ये कहना था, नहीं उलहना दो, अच्छा आपने तो ये कहा था, आपने तो ये किया ही नहीं। वो कहती थी मोहिनी बहन आपने क्या वरदान तो नहीं दिया, आपने तो उलहना दिया, उलहना नहीं देना है। ऐसे ही हम देखते थे कि कई बार कोई शब्द ऐसा मुंह से निकल जाता था खासकर दीदी के टाइम, अभी तो नए ज्ञान में थे, दीदी उसी समय करेक्ट करके कहती थी ये ब्राह्मण डिक्शनरी का शब्द नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। फिर कई बार ऐसा होता है कि बैठते हैं, चाहे मित्रता है, थोड़ा समाचार शुरू करते हैं, फिर एक दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, ये देखो ऐसा है, ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा है, ऐसा है, जैसे कि हमारे ऊपर उसका चार्ज रखने की जिम्मेवारी है। तो वाणी की जो मर्यादा है वो इसलिए जरूरी है कि आप इसी मुख से भगवानों वाच्य सुनाने वाले हैं, शंख ध्वनि करने वाले हैं, तो फिर इस तरह के शब्दों की ध्वनि क्यों निकले। आज हम लोगों ने यहाँ पर अपने लिए प्रैक्टिस लिए एक दिन की, कि हर एक को उसकी विशेषता बताना, चाहे फोन करके बताओ, कैसे भी तुम्हारी ये विशेषता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, प्रेम से सम्मान से कहो। तो वाणी की जो मर्यादा है, महान आत्माएं महावाक्य वरदान की बोली, सदा खुश रहो, सदा अच्छा चलता रहे, बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे वरदान दो, ठीक ही हो जाएगा। दावा की आपके ऊपर देखो कितनी वरदानों की बरसात है। तो ऐसे जो है मर्यादा, हमेशा शब्द ऐसे हो जो वरदानी हो, तो ये बहुत बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आती है दृष्टि। तो दृष्टि की जो मर्यादा है, बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे जब भी किसी से मिलो तो उसकी भ्रिकुटी में देखो, कितना चमकता हुआ सितारा है, कितना भाग्यशाली सितारा है, ये तो बाबा की बहुत न्यारा प्यारा सितारा है। जैसे दृष्टि के द्वारा मर्यादाएं दृष्टि की रखते हुए, तो इसी तरह से हर कर्म इंद्री, हर ज्ञान इंद्री, उसकी मर्यादाओं की लिस्ट, मतलब कि हमारा हर कर्म में जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो पवित्रता है, उसके लक्षण बहुत स्पष्ट है। मुझे याद है दादी प्रकाशमणि स्नेह मूर्ति थी, पर सबसे बड़ा उनका जो एक समभाव था, सबके प्रति स्नेह, सबको सब कुछ देना, तो वो जैसे कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम में हमको अच्छे मार्क्स लेनी है, क्योंकि रॉयल घराने के हमको मेंबर बनना है, उच्च पद पाना है, विश्व का मालिक बनना है, तो मर्यादा ऐसा पुरुष जो उत्तम एक अच्छा एग्जांपल हो। तो इसलिए आप कंट्रोल शब्द को न लाके मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो मर्यादाओं के पालन से जो ऊंची स्थिति बनती है, खुशी रहती है, संतुष्टि रहती है। तो इसलिए पहला शब्द मैंने कहा कंट्रोलिंग पावर की जगह मर्यादा पुरुषोत्तम। और रिकॉर्ड तो बाबा के पास होता है ना, हरेक का, तो बाबा के पास होता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे तो बाबा की तरफ से मार्क्स भी मिलेंगे, पास में तो ऑनर होंगे और खुशी होगी। देखो कंट्रोल में भारी लगता है कि क्या कंट्रोल करना है, ये भी कंट्रोल करना है, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की पावर चाहिए। और दूसरा स्वराज्य अधिकारी, रूलिंग पावर, किस पर रूल करना है, पहले तो स्वराज्य। तो राज्य करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, राजनीति ना, तो नीति का मतलब प्रिंसिपल्स, राज करने की नीति, तो उसमें बाबा ने हमको कुछ नियम बनाए हैं, कुछ संयम के लिए बताए हैं। तो वो नीति पूर्वक जो नियम संयम का पालन करते हैं, देखो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत अच्छा है। तो नियमों की पालना नियमित रूप से, तो स्वराज्य अधिकारी रूलिंग पावर उसमें आती है जो खुद नियमों पर, नीति पॉलिसीज पर, प्रिंसिपल्स पर चलता है। तो नियम और संयम बाबा ने हम बच्चों को चाहे दिनचर्या के लिए भी नियम दिए हुए हैं, हर एक चीज के लिए बाबा ने हमको नियम बताए हैं। तो इसलिए राजस्व राज्य अधिकारी, तो स्व पर राज्य करने के लिए अर्थात अपनी मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि संस्कार तीनों ही संयम में है, हमारा उन पर अधिकार है, जब चाहे जितना चाहे जो चाहे सोच सकते हैं, डिसिप्लिन है। दादी गुलजार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब भी दादी के पास जाते थे और कोई बात है उनके सामने आती है, कभी हमारे सामने, दादी आपका सोच तो नहीं चल रहा है, मैं क्यों सोचूं, दादी आपको थोड़ा तो चिंता, थोड़ा ख्याल चल रहा होगा, अरे मेरा बाबा नहीं करता चिंता तो मैं क्यों करूं। तो जैसे उनका अधिकार, राज्य अधिकार मतलब जो उनकी रूलिंग कैपेसिटी थी कि अपने संकल्प को अधिकार रखकर जितना जहां सोचना है उतना ही सोचना बहुत जरूरी है। तो मुझे उनका हमेशा कई बातें उनकी आती हैं, क्योंकि मेरी जीवन में तो सब दादियों का ज्ञान तो सभी सुनाते हैं, पर उनकी जो छोटी छोटी बातों पे पर्सनल शिक्षाएं मिलती थी उसका मुझे बहुत अच्छा बार बार बहुत याद भी आती है। जीवन में मदद मिली है, धारणा में बहुत मदद मिली है वो बातें सोच करके। तो इसलिए जैसे कि आजकल बाबा बहुत कह रहे हैं बच्चे ड्रिल करो, अब क्यों ड्रिल कर रहे हैं, क्यों ड्रिल करना भी एक अनुशासन है अपने ऊपर, और वो भी बाबा कहता है एक सेकंड में, पांच स्वरूप पांच सेकंड। कल सारा दिन हमने इसी पर ड्रिल की अपने स्वरूप को। तो जो स्वराज्य अधिकारी होगा वो समान के सिंहासन पर बैठेगा, स्वराज्य अधिकारी समान से नीचे नहीं आता। कोई भी समान हम ले ले, डबल क्राउन का ले लो, विजय माला में दाना बनना उसका ले लो, पर समान, अपने समान में रहो। तो स्वराज अधिकारी की निशानी है समान, और समान जिसका होता है वो क्या करता है, सबको समान देता है, औरों को भी आप उस समान में ऐसे वर्णन करो बोलो कि वो भी समान में आ जाए। तो जो समान का आसन है, क्योंकि राज्य करने के लिए आसन चाहिए ना, तो समान के आसन पर बैठने से बाबा ने एक बार कहा था लिस्ट बनाओ अपने समान की और उसके आसन पर बैठो। तो समान के आसन पर बैठने से जो अंदर में नशा रहेगा, तो दूसरों पर थोड़ी रूल करना है, वो तो आपको आदर देंगे, आपकी बात मानेंगे। अभी हमारी दादी प्रकाश बनी थी, एक बार कहती मोहिनी बहन मुझे तो एक बार भी बस कहती हूँ नहीं कहूं ताली बजाऊं तो भी सब लोग सब कुछ कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि दादी सोमान में थी ना, सदा हर्षित रहती थी, स्नेही मूर्त थी। तो हम जितना जितना स्वरूपों का अभ्यास करेंगे ना, कि अपने आदि स्वरूप का सम्मान है, अपने पूज्य स्वरूप का सम्मान है, ब्राह्मण जीवन का सम्मान है, फरिश्ते रूप का, पांचों स्वरूप का, उसको स्वरूप को सम्मान में बदलो। तो सम्मान में बदलने से वो एक आसन मिलेगा। तो ये जो सम्मान का आसन है, ये बहुत बहुत श्रेष्ठ आसन है। दूसरा आसन बाबा ने हमको दिया है कमल का आसन, कि बच्चे न्यारे रहो, प्यारे रहो। आपका अधिकार, आपका राज्य, कारोबार अपनी कर्म इंद्रियों के दरबारियों के साथ केवल नहीं, लेकिन औरों के साथ भी, क्योंकि कारोबार तो होता है ना, राज्य में कारोबार तो चलता है ना, उसमें आप जितने भी न्यारे और प्यारे रहेंगे, जिसको हम कमल आसन कहते हैं, हमारे पूजनीय स्वरूप में हाथ में कमल, सिंहासन कमल का, नैन कमल समान, मुख कमल, तो बहुत ही जैसे एक राज्य अधिकारी रूलिंग पावर के लिए न्यारे प्यारे रहो। तो ये प्रश्न बहुत पूछते हैं, दादियों से पूछते थे कि मुझे कैसे पता चले कि ये बात मेरे मन की है या बाबा की तरफ से मुझे ये श्रेष्ठ संकल्प आ रहा है। तो पहले तो होता था चलो दादियों के पास जाओ, थोड़ा वेरीफाई कर लो। तो एक बार बहुत अच्छा दीदी ने बताया, दीदी मनमोहिनी के दिन भी आ रहे हैं ना अभी, तो उन्होंने बताया कि देखो आपको एक श्रेष्ठ संकल्प आया तो आपने सुनाया, जैसे मीटिंग में सुनाया या कुछ लोगों में सुनाया, और उसके बाद अगर ऐसा होता है कि वो संकल्प नहीं सबने स्वीकार किया या नहीं प्रैक्टिकल में हुआ, तो आपके मन में ये आता है कि मेरा संकल्प किसी ने सुना नहीं, मेरा संकल्प तो प्रैक्टिकल में हुआ नहीं, तो डाउट सा आता है। तो दीदी ने कहा देखो जहां मेरा है ना वो संकल्प आपका है, अगर बाबा की तरफ से आपको जो संकल्प आएगा उसमें तो आप न्यारे रहोगे ना, अच्छा ऐसा संकल्प आप दे दोगे, संकल्प पे न्यारे हो जाओगे। अगर आप न्यारे नहीं हो पा रहे हो क्योंकि मेरा पन है, मेरे को वो बात इतनी ध्यान में आती है कि न्यारा मतलब कि बार बार कोई बात का संकल्प न चले, बार बार कोई बात का संकल्प न चले, अगर बाबा की तरफ है तो होना होगा तो हो जाएगा, और मैं डाउट क्यों करूं, क्योंकि वो तो हो गई। पर आप देखेंगे कि होता है, वो जरूर होता है। तो कोई भी संकल्प होता है पहले बाबा को अर्पित कर दो, और फिर उसके बाद न्यारे रहो। तो न्यारे रहेंगे तो प्यार भी बना रहता है, नहीं तो यही मन में आता है कईयों को, मैं जो कहती हूँ कोई सुनता नहीं है, कभी होता नहीं है, मेरा माना नहीं, मैंने मीटिंग में ये बोला मेरा किस सुना नहीं, क्योंकि आपका संकल्प है ना। तो कैसे हम अपने बुद्धि को बाबा के साथ रखते हैं, तो श्रेष्ठ संकल्प आते पर वो फिर प्रैक्टिकल भी हो जाते। तो एक स्वराज्य और समान कमल पुष्प समान जीवन क्या है, न्यारे फिर प्यारे, न्यारे नहीं रहते तो प्यारे नहीं रह पाते। आज हमको यज्ञ में सबसे ज्यादा शक्ति है और चाहिए, तो वो स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति। सभी हम रूहानी यात्रा पर है, सहयोगी बन करके साथ साथ चलते रहे। पार्ट सबका अलग है लेकिन जैसे मैंने बताया सबका स्पेशल ही है। तू कमल आसन धारी, सोमान का आसन, फिर कमल आसन और उसके बाद बाबा के दिल का आसन, सिंहासन बाबा कहते हैं, पर आसन कह रहे हैं, एक ही बात है। अभी बाबा के दिल पर जो सागर है, ट्रुथ है, लव है, उसके आसन पे कैसे बैठेंगे? प्रेम स्वरूप होंगे तो प्रेम के सागर के आसन पर बैठेंगे ना। तो बाबा के दिल तक नशीन बनने के लिए तो स्वराज अधिकारी इस तरह से अपनी स्टेज को देखता रहेगा। पहली स्टेज देखेगा सोमान के आसन पर, दूसरी स्टेज वो देखेगा कमल आसन पर, प्यारी प्यारी स्थिति, और तीसरी वो देखेगा बाबा की दिल तखत, और फिर अपना जो देवी तखत है जहां पर पूरा राज्य जिसमें दो क्राउन है, हाईनेस होलीनेस, तो देवी तखत पूजनीय जो स्वरूप है वो अपना। तो अभी संगम युग पर ये सब हमको फाइनल स्टेज में अपने ऊपर न केवल स्थिति लेकिन अनुभव ही ऐसे होने चाहिए, हमारे जो पुरुषार्थ की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई दे, और ऐसे हो सकता पुरुषार्थ नहीं है परंतु प्रारब्ध की जीवन चल रही है। तो आप कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को मर्यादा पुरुषोत्तम स्वराज अधिकारी, तो थोड़ा रिवाइज करने पड़ेंगे अगर टाइम मिले तो, बाबा ने क्या नियम दिए हैं, किन बातों में संयम जरूरी है, कौन सी मर्यादाएं हैं, सोच में क्या, बोल में क्या, अगर इसके विस्तार में आप जाएं, मैं तो इतने विस्तार में नहीं जा पा रही, लेकिन आप एक एक बात की वाणी के लिए क्या मर्यादाएं हैं, दृष्टि के लिए क्या मर्यादाएं हैं, तो ये जो दो टाइटल होंगे ना, तो उसमें कंट्रोल करना, तो क्या वो नेचुरली कंट्रोल में रहेंगे और व्यवस्थित रहेंगे, राज्य का कारोबार अच्छा चलता रहेगा, कभी ऐसा नहीं लगेगा जो बाबा कहते हैं ना, किसी कर्मचारी ने धोखा दे दिया, सब कर्मचारी आज्ञा पर चलेंगे और हर कदम पर खुद ही लगेगा कि जैसे एक मैं रॉयल आत्मा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वराज अधिकारी हूं। तो इसलिए विचार तो बहुत चल रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपसे शेयर करें, परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है उसको अगर आप ये दो शब्दों में चेंज करके देखें, फिर आप विचार करें और थोड़ा होमवर्क करें तो पता लगेगा कि 60% 70% 90% मेरा कितना, कितनी मेरे में पावर है, कितना मैं मर्यादा पुरुषोत्तम स्वराज अधिकारी बना हूं या बनी हूं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़े से संकल्प अपने में ला करके अनुभव और स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करेंगे। तो हम सभी मन को एकाग्र करते हैं और अपनी सारी एनर्जी को ब्रिकुटी के बीच में लाकर इस स्मृति को अपने मन में लाते हैं कि मैं आत्मा, जीव ज्योति स्वरूप, पवित्रता और शांति के गुणों की मूर्ति, मैं इन ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। मैं एक ऐसा राजा हूं जो मेरे राज्य में संपूर्ण पवित्रता, सुख, आनंद और शांति है। सभी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को मन और बुद्धि संस्कारों को सबको समेटते हुए मैं भी कुटीर रूपी सिंहासन पर बैठ सदा उच्च संकल्प सदा श्रेष्ठ संकल्प सदा शांत संकल्प पवित्र संकल्पों की रचना करती हूँ। मेरी बुद्धि सदा एक के साथ सदा पवित्र और साफ मेरी वृत्ति शुद्ध एंड मेरी वाणी वरदानी मेरे कर्म एक सेवाधारी नम्रता से
ओम शांति।